नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंबेडकर जयंती पर कल हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा के बाद केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती का निर्देश दिया। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कार के लिए सरकार ने नामांकन आमंत्रित किए। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब 80 करोड़ डॉलर बढ़कर 6 खरब 76 अरब डॉलर से अधिक हुआ। अमेरिका ने स्मार्टफोन और कंप्यूटर को नए शुल्क से छूट दी। असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका और अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम तथा ऋषभ यादव की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंबेडकर जयंती पर कल हरियाणा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी सवेरे 10:15 बजे हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी हवाई यात्रा सुरक्षित, सस्ती और सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के 410 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यमुना नगर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तथा 800 मेगावाट क्षमता के दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी यमुना नगर के मुकरवपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 1070 करोड़ रुपए की लागत से बने 14 किलोमीटर से अधिक लंबे रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। इससे दिल्ली नारनौल के बीच की दूरी 1 घंटे कम हो जाएगी। समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आज पटना में भीम पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। वे गांधी मैदान से पदयात्रा को रवाना करेंगे और ये यात्रा पटना के विभिन्न इलाकों से गुजरेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पदयात्रा में मेरा भारत संस्था के हजारों स्वयंसेवी शामिल होंगे।
बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के विचारों को समर्पित भीम पदयात्रा के दौरान स्वच्छता अभियान, राष्ट्र के प्रति संकल्प सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया है। पदयात्रा की शुरुआत में युवा माई भारत स्वयंसेवक यंग अचीवर्स संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। गांधी मैदान से प्रारंभ होने के बाद यह पदयात्रा डाक बंगला, जेपी गोलंबर सहित कई प्रमुख चौक चौराहों से गुजरते हुए पटना हाईकोर्ट स्थित बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा तक पहुंचेगी। कार्यक्रम के दौरान युवा प्रतिभागी विकसित भारत बनाने का संकल्प भी लेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बड़े पैमाने पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी को देखते हुए केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती का आदेश दिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुमेंदु अधिकारी की याचिका पर न्यायमूर्ति सोमेन सेन और राजा बसु चौधरी की पीठ ने ये आदेश दिया। श्री अधिकारी ने अपनी याचिका में राज्य के कई भागों में स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि अन्य जिलों में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद में हुए संघर्ष में 3 लोग मारे गए हैं और हिंसा के सिलसिले में 138 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत किया जा रहा है।
भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की परिकल्पना और सहकारिता के क्षेत्र में विविधीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम में माइक्रो एटीएम, किसान क्रेडिट कार्ड और स्वीकृत ऋण पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक रायगढ़ किले को देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित करने को प्रतिबद्ध हैं। गृहमंत्री ने महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में कल छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कक्षा 7 से 12 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक बार इस पवित्र स्थल पर जाना सुनिश्चित करने का आग्रह किया, जिससे वे छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत और आदर्शों से जुड़ सकें।
यहाँ जो भी आता है वो नई ऊर्जा, नई चेतना, नई प्रेरणा लेकर जाता है। मैं देश भर के युवाओं को कहना चाहता हूँ, हर युवा को यही प्रेरणा स्थल पर आकर प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए।
राजस्थान सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार की 25 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया है। इसके साथ ही अब इन योजनाओं की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा और स्कीमों को लागू करने वाले विभागों को मासिक प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। फ्लैगशिप योजनाओं के दायरे में जल जीवन मिशन भी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने झालावाड़ जिले में इस योजना की धीमी प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 10 अरब 80 करोड़ डॉलर बढ़कर 676 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब 7 करोड़ डॉलर से ज्यादा होकर 574 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। देश का स्वर्ण भंडार 1 अरब 56 करोड़ डॉलर से अधिक बढ़कर 79 अरब 36 करोड़ डॉलर हो गया। अमेरिका ने स्मार्टफोन और कंप्यूटर आयात को नए शुल्क से मुक्त रखने की घोषणा की है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग के अनुसार स्मार्टफोन और कंप्यूटर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश देशों पर लगाए गए 10% शुल्क और चीन पर लगाए गए 145% शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस छूट में सेमीकंडक्टर, सौर सेल और मेमोरी कार्ड सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। अमेरिका ने कहा है कि ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान के साथ हुई पहले दौर की वार्ता बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल ईरान में विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी के साथ बातचीत की। वार्ता की मेजबानी ओमान के विदेश मंत्री सईद बदर ने की थी। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए 31 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हुई थी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ही स्वीकार की जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि चयनित पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाएंगे।
पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है। वर्ष 1954 में स्थापित ये पुरस्कार उल्लेखनीय कार्य को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं और कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक कार्य, सिविल सेवा तथा व्यापार एवं उद्योग जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इच्छुक व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श, दिल्ली।
पंजाब में आज बैसाखी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैसाखी से ही किसान फसलों की कटाई शुरू करते हैं।
आज के दिन दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वर्ष 1699 में आनंदपुर साहिब स्थित गुरुद्वारा तख्त श्री कीर्तगढ़ साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी।
वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला।
देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ और अमृतसर स्थित श्री हरिमंदर साहिब के साथ ही अन्य गुरुद्वारों में नतमस्तक हो रहे हैं और पवित्र गुरबानी कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। वहीं परंपरागत रूप से किसान अपने खेतों में खड़ी सुनहरी गेहूं की फसल की कटाई शुरू करके बैसाखी मना रहे हैं। इस दिन राष्ट्र उन सैकड़ों निर्दोष लोगों को भी याद करता है जिन्हें 1919 में जलियांवाला बाग में ब्रिटिश अधिकारी रेजिनल्ड डायर ने कत्ल कर दिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आग को और भड़का दिया था। लोग आज यहां जलियांवाला बाग पहुंचकर उन्हें भी श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
आज दुनिया भर में पाम संडे मनाया जा रहा है। ये दिवस ईसा मसीह के यरूशलम में प्रवेश की स्मृति में मनाया जाता है। आज इस अवसर पर नागालैंड में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और समाज में शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण के कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेनम की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल रात रोमांचक मुकाबले में चीनी ताइपे के हुआंग जाओ और चेन ची लुन की जोड़ी को हराकर खिताब जीता। इधर मोहन बागान सुपर जायंट्स ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। कोलकाता में कल हुए फाइनल में मोहन बागान ने बेंगलुरु को 2-1 से हराया। मोहन बागान सुपर जायंट्स ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। इस बीच बिहार के राजगीर में 1 जून से 10 जून तक महिला कबड्डी विश्व कप खेला जाएगा। विश्व कप में 14 टीम भाग लेंगी। बिहार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन करेगा। और हैदराबाद में कल इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स की पंजाब के खिलाफ ये 9वीं जीत थी। प्रतियोगिता में आज जयपुर में दोपहर बाद 3:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा।
मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मौसम विभाग ने दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बिजली के साथ गरज और बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी यही मौसम रहेगा। इस बीच पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 2 से 3 दिन भी ऐसी स्थिति रहने की आशंका है। इसके अलावा विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अलग अलग स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि इस महीने की 14 से 18 तारीख तक पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में लू चलने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
धन्यवाद निखिल। अखबारों ने आज अलग अलग समाचारों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर और राष्ट्रीय सहारा ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, विधेयकों पर हां या ना 3 माह में तय करें राष्ट्रपति। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, सुप्रीम कोर्ट का अभूतपूर्व मत, 3 माह से ज्यादा देरी होने पर कारण बताएं और राज्य को सूचित करें। हरिभूमि और अमर उजाला के अनुसार नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का एक्शन शुरू, कब्जे में ली जाएगी 661 करोड़ रुपए की संपत्ति। वीर अर्जुन के वाणिज्य पन्ने की सुर्खी है, अमरीकी शुल्क से वैश्विक व्यापार में 3% की कमी आने की आशंका। राजस्थान पत्रिका ने खास खबर दी है, बंदूक छोड़ी तो बदला जीवन, पूर्व नक्सली कर रहे हैं पशुपालन, खेती किसानी और पढ़ाई लिखाई। देशबंधु और जनसत्ता की सुर्खी है, सुखबीर सिंह बादल फिर बने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष। वहीं नवभारत टाइम्स लिखता है, बजरंग बली के भक्ति रंग में डूबी दिल्ली, जय हनुमान के जयकारों से गूंजे मंदिर। पत्र ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हवाले से लिखा है, दिल्ली में झुग्गियों और लेबर एरिया के पास लगेंगी अटल कैंटीन। हरिभूमि के खेल पन्ने की खबर है, पंकज आडवाणी ने WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में जीता रजत।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंबेडकर जयंती पर कल हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर भड़के हिंसा के बाद केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती का निर्देश दिया। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कार के लिए सरकार ने नामांकन आमंत्रित किए। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब 80 करोड़ डॉलर बढ़कर 6 खरब 76 अरब डॉलर से अधिक हुआ। अमरीका ने स्मार्टफोन और कंप्यूटर को नए शुल्क से छूट दी। और असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।